أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بات ہماری چل رہی ہے کتاب آموزش فلسفہ کے درس نمبر 15 میں، اور فارسی کتاب کے مطابق ہم صفحہ نمبر 200 پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر ہم مفہوم کلی کی جو تین اقسام بیان کی تھی، معقولات اولا، معقولات ثانیہ منطقیہ و معقولات ثانیہ فلسفیہ، ان کی خصوصیات کو یہاں پر بیان کر رہے تھے کہ معقولات اولا کی کیا خصوصیات ہیں، معقولات منطقیہ کی کیا خصوصیات ہیں، اور فلسفیہ کی کیا خصوصیات ہیں، تاکہ ہم ان خصوصیات و علامات کے ذریعے پہچان سکیں کہ کون سے مفاہیم معقول اول میں آئیں گے اور کون سے معقول ثانی میں آئیں گے. تو مفاہیم منطقی جو ہیں ان کی خصوصیت واضح ہے کہ یہ فقط اور فقط جو ہیں وہ ذہن کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان کا موضوع بھی ذہن کے اندر ہوتا ہے، ان کا سبجیکٹ بھی ذہن میں ہوتا ہے، خارج سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. انسان کلی ہے، انسان نوع ہے، حیوان جنس ہے، اور یہ چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ مفاہیم منطقی ہیں. نوع ہونا، جنس ہونا، فصل ہونا، قیاس کی مثلا عکس ہے، عکس مستوی، عکس مخالف، یہ جتنی بھی مفاہیم منطق میں استعمال ہوتے ہیں یہ سارا کیا ہے؟ انسان کے ذہن کے اندر پایا جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو جاننا جو ہے وہ آسان ہے، مفاہیم منطقی کو. مفاہیم ماہوی کہ جس کو ہم نے معقولات اولا کہا ہے، یا اس کو ہم مفاہیم ماہوی کہتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ بیان کی تھی کہ یہ معقولات جو ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ اور مستقیم خارج سے حاصل ہوتے ہیں. یہ والی خصوصیات جو ہیں میں چاہوں گا کہ شہید مطہری کی کتاب سے پڑھیں، تاکہ یہ بحث جو ہے آسانی کے ساتھ ہمارے سمجھ میں آ جائے. چونکہ پچھلے درسوں میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ بحث انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اگر اس بحث کو صحیح طریقے سے حل کر لیا تو بہت سارے مغالطات سے آشنا ہوں گے جو دوسروں نے کیے ہیں، مبتلا ہوئے ہیں اس کے اندر، اور ہم خود بھی غلطی سے بچ جائیں گے، امکانات بہت زیادہ کم ہو جائیں گے فلسفے کے اندر. تو لہٰذا اگر اس میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں پایا جاتا. یہ کتاب جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، کتاب کی آشنائی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے آ کر، یہ فلسفہ مقدماتی کے مطالب جو ہیں وہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور اس کو جمع کرنے والے اور اس کو صحیح طریقے سے کتابی صورت میں تدوین کرنے والی جو شخصیت ہے وہ عبد الرسول عبودیت ہیں. کہ آغا عبد الرسول عبودیت بھی اس وقت ایران کے اندر ایک ٹاپ لیول کی ایک فلسفی شخصیت ہیں، اور خصوصاً ملا صدرہ کے اوپر ان کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن ہے، یعنی ماہر ہیں ملا صدرہ کے فلسفے میں. تو ایک عام شخصیت نہیں ہے، بہت عالی اور ماہر شخصیت ہے فلسفے میں. تو لہٰذا دو اہم شخصیات کی کتاب ہے، یوں کہیں کہ مطالب جو ہیں وہ شہید مطہری ہے، جو کہ ایک بہت بڑے فیلسوف آدمی تھے، اور اس کو پھر منظم طور پہ، کیونکہ انہوں نے مختلف کتابوں میں باتیں کی ہیں، مختلف تقریروں میں باتیں کی ہیں، تو انہوں نے چاہا آغا عبد الرسول عبودیت نے کہ ایک ایسی کتاب تدوین کی جائے کہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے مطالب ہوں اس میں، اور وہ پرائمری لیول کی ہو، ٹھیک ہے، مڈل یا ایڈوانس لیول کی نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے پھر اس طریقے سے اس کتاب کو تدوین کیا ہے اس میں آ کر. تو اس کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں کہ ابھی تک یہ اردو ترجمہ نہیں ہوا اس کا، فارسی سے ہی جو ہے وہ استفادہ کریں گے انشاءاللہ، امید ہے کہ اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ہو جائے. یہاں پر पहली जो खसूसियत यहाँ पर बयान कर रहे हैं और हम पहले इसको बयान भी करके आए हैं, वो ये कि माकूलात उला जो हैं वो मुस्तकीम और बग़ैर वास्ते के खारजी जो अशिया हैं उससे लिए जाते हैं माकूलात उला को। देखिए इबारत बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर फरमाते हैं कि दर साख्तन आनहा सूरत इदराकी ये दीगर वसातत व दखालत नादारत, के माकूलात उला को हासिल करने के लिए कोई और सूरत उसके अंदर वासिता नहीं बनती और ना ही उसके अंदर दखालत करती है। ये माकूल उला के अंदर है। अम्मा माकूलात सानिया क्या हैं? ये मुस्तकीम हासिल नहीं होते, जैसे पहले भी बयान किया था, कल आपकी खिदमत में कहा था कि ये क्या है, मुस्तकीम हासिल नहीं होते, बल्कि क्या है, ये मुकायसे की सूरत में जो है वो हासिल होते हैं। फिर आगे चल के मिसाल के साथ मसलन इसको बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि कोई अच्छी ताबीर जो है वो इसको यहाँ पर बयान करें। मसलन देखें, फरमाते हैं कि एक कागज़ जो है वो खारिज में मौजूद है, जैसे कल मैंने किताब की मिसाल दी थी, आप एक कागज़ की मिसाल लें इस किताब के मुताबिक, एक कागज़, ये कागज़ है ये खारिज में मौजूद है, और फिर ये कहा जाता है कि ये कागज़ जो कि मौजूद है ये सफ़ेद है, दुरुस्त है, ये कागज है और ये क्या है, सफेद है, और फिर इस कागज के बारे में कहा जाता है कि ये कागज वाहिद है, एक है, दुरुस्त है। अब आप देखें हमने तीन जुमले बना दिए हैं, कागज है, ये कागज है, ये कागज सफेद है, और ये कागज क्या है, एक है, वाहिद है। तो यहां फरमाते हैं कि हमारे पास अब यहां पर तीन मफहूम जहनी जहन में आ गए, एक मफहूम इसका कागज का है, एक मफहूम सफेदी का है कि सफेद कहा हमने इसको, और तीसरा मफहूम जो है वो क्या है, वाहदत, वाहिद, एक होना, ये तीन मफहूम हमारे पास मौजूद है। अब हम देखते हैं कि कागज जो है वो मौसूफ है और सफेदी और वाहदत क्या बन रहे हैं, इसकी सिफत बन रहे हैं, यानी हम कहते हैं ये कागज सफेद है और ये कागज क्या है, एक है, वाहिद है। अब हम इसको मजीद तहलील करते हैं, वो ये कि कागज के बारे में जो हमारा तसव्वुर है और सफेदी के बारे में जो हमारा तसव्वुर है वो ये है कि ये कागज और ये सफेदी खारिज में मौजूद हैं और एक दूसरे से जुदा हैं, यानी दो वजूद हैं खारिज में एक दूसरे से अलग, कागज एक वजूद है और सफेदी अलग वजूद है। ये बात इसी को समझाना है आगे, दुरुस्त है। यहां कागज और सफेद दो मफहूम थे ना हमारे पास, इनके बारे में हमारा क्या तसव्वुर है, हम ये कहते हैं कि दो मफहूम है, इसके बाहर दो मिसदाक हैं, एक कागज है और एक सफेदी है और एक दूसरे से जुदा है, लेकिन ये सफेदी क्या है, अरज है, दुरुस्त है, कागज था सफेदी इसके ऊपर आई है, अभी जोहर अरज की क्या तफसीलात हैं उसको बाद में पढ़ेंगे हम जाकर। एक मरतबा एक जात होती है, एक जिस्म होता है, उसके ऊपर एक सिफत आ जाती है, आरज होती है, अरज उसको कहते हैं, सफेदी इसके ऊपर आई है, कागज था ये मिसाल के तौर पे बेदुने रंग, अब क्या है उसके ऊपर सफेदी आ गई है। बस यहां पर फिर इसका मतलब यह है कि इस जगह पर ये जो कागज इस वक्त मेरे हाथ में है दो वजूद हैं और दो वाकईयत हैं, चूंकि दो वजूद हैं दो वाकईयत हैं। कागज के बारे में हम कहते हैं कि ये मौजूद है और सफेदी के बारे में कहेंगे ये दूसरा वजूद है, दुरुस्त है। लेकिन जब हम आकर तहलील करते हैं कि ये कागज है और वाहिद है, یہاں قضیہ فرق کر جاتا ہے. یہاں قضیہ کاغذ اور سفیدی والا نہیں ہے, یہاں صورتحال ایسی نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے, وحدت جو ہے وہ اس عالم کے موجودات میں سے کوئی خاص وجود نہیں ہے. دیکھیں دقت کریں, کاغذ کو الگ وجود مانتا ہے ہر انسان, سفیدی کو کاغذ سے ہٹ کر ایک الگ وجود مانا جاتا ہے, ہر انسان مانتا ہے اس کو, کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ دکھا بھی سکتے ہیں, درست ہے کہ خارج میں ایک ہی چیز میں دو یوں کر کے ہیں, سفیدی اس طریقے سے کاغذ کے اوپر آئی ہوئی ہے کہ آپ ایک چیز اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں کیا ہے, یہ دو چیزیں ہیں, ایک کاغذ ہے, اس کا ذات ہے اپنی کاغذ کی, ایک اس کے اوپر سفیدی کی جو صفت آئی ہوئی ہے, درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ آیا دکھا سکتے ہیں خارج میں کہ واحد نام کی کوئی چیز ہے سفیدی کی طرح, ہو صفت کاغذ کی یا کسی بھی چیز کی, لیکن اس کو کہا جائے کہ ایک کاغذ کا وجود ہے اور ایک واحد کا وجود ہے, اس قسم کا کوئی تصور ہمارے ذہن کے اندر نہیں آتا. سفیدی کے بارے میں آتا ہے ہمارے ذہن میں, ہم کہتے ہیں ایک وجود کاغذ کا ہے اور ایک وجود کیا ہے, سفیدی کا ہے. یہاں دو وجود کو ہم پاتے ہیں, لیکن جب ہم کاغذ اور واحد کو آپس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کاغذ کا تو وجود ہے لیکن واحد الگ سے کوئی وجود نہیں رکھتا سفیدی کی طرح. تو لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ واحد جو ہے وہ کاغذ کے مقابلے میں ایک الگ وجود ہے یا انسان کے مقابلے میں الگ وجود ہے, یعنی وجودات موجودات کے مقابل میں الگ وجود شمار ہی نہیں ہوتا. تو اب کیا ہوا یہاں پر پھر, تو اس کا نتیجہ اب ہم یہ لیتے ہیں کہ وحدت جو ہے یا علیت یا معلولیت, درست ہے, یہ کیا ہے, اقسام موجود میں سے نہیں ہیں, یعنی وجود کی اقسام نہیں ہیں. جس طرح مثلا سفیدی ایک وجود ہے, سیاہی ایک وجود ہے, دیوار ایک وجود ہے, کاغذ ایک وجود ہے, انسان ایک وجود ہے, اب دیکھیں یہ قسمیں ہیں وجود کی, درست ہے. وحدت یوں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک سیاہی ہے, ایک سفیدی ہے, ایک انسان ہے, ایک حیوان ہے اور ایک وحدت ہے. وحدت کو وجودات کے مقابل میں آپ لے کر نہیں آتے. بس وحدت جو ہے, اور یہ وحدت کی مثال بے عنوان مثال دے رہا ہوں, وائلہ جیسے آپ علت کو بھی آپ اس میں شمار کر سکتے ہیں اور باقی مفاہیم جو فلسفی ہیں اس کو بھی آپ اسی طریقے سے شمار کر سکتے ہیں, یہ اقسام موجود میں سے نہیں ہیں بلکہ احکام موجود میں سے ہیں, یعنی یہ موجود کے احکام شمار ہوتے ہیں نہ کہ قسم, درست ہے. بس معقول اولا اور معقول ثانی فلسفی, یعنی مفاہیم ماہوی اور مفاہیم فلسفی, ان کے درمیان ایک فرق ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور خصوصیت بھی پتہ چل جاتی ہے کہ مفاہیم ماہوی جو ہیں وہ کیا ہیں, ان کے جو مصادیق ہیں وہ الگ الگ اپنے وجود رکھتے ہیں, اقسام موجودات میں سے ہیں یہ, لیکن جو فلسفی مفاہیم ہیں وہ اقسام موجود نہیں ہیں, موجود کی اقسام شمار نہیں ہوتے بلکہ موجود کے احکام شمار ہوتے ہیں. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ وجود کا ایک حکم یہ ہے کہ وہ واحد ہے, وجود کا ایک حکم یہ ہے کہ وہ علت ہے, وجود کا ایک حکم یہ ہے کہ وہ معلول ہے, حکم ہے اس کا, نہ کہ وجود کی الگ قسم. بات واضح, بس ایک جو ہے خصوصیت اور فرق جو ہے وہ یہ سامنے آتا ہے, اور اسی کے ضمن میں بیان کر دیا کہ معقول اولا یا معقولات اولیہ جو ہیں یہ مستقیم اور بغیر واسطے کے حاصل ہوتے ہیں, بغیر کسی دخالت کے حاصل ہوتے ہیں, لیکن معقولات ثانیہ جو ہیں یہ کیا ہیں, یہ ڈائریکٹ حاصل نہیں ہوتے بلکہ مقایسے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو, درست ہے. अगला खसूसियत और फ़र्क, यानी खसूसियत भी है, उन खसूसियत के ज़िमन में फिर जो है वो फ़र्क भी जो है वो वाज़े हो जाता है। यहाँ पर एक मतलब जो बयान कर रहे हैं, और हमारे अमोज़ फ़लसफ़ा के अंदर भी ये किताब, ये मतलब जो है वो ज़िक्र है, वो ये है कि माकूलात अवलिया एहसास और तखय्युल से के साथ मसबूक हैं। यानी क्या मुराद मसबूक है? यानी पहले एहसास होगा, तखय्युल होगा, तब माकूल अव्वल हासिल होगा। फरमाते हैं कि यानी पहले हिस के मर्तबे में मौजूद होगा, यानी आप देखेंगे, सुनेंगे, चखेंगे एक चीज को, फिर वो मर्तबा ख्याल में आएगा। क्योंकि ये बहस हमने तसव्वुरात जुज़ई में की है कि जुज़ई तसव्वुर में एक तसव्वुर क्या था, तसव्वुर हिस्सी था, और एक तसव्वुर क्या था, तसव्वुर ख्याली था, और तीसरा तसव्वुर क्या था, तसव्वुर वाहमी, और चौथा तसव्वुर कुल्ली। तो हमने ये वहां बयान किया था कि तसव्वुर कुल्ली जो है वो हासिल कब होता है कि जब तसव्वुर हिस्सी और तसव्वुर ख्याली से गुजर कर आए महसूसात के अंदर। दुरुस्त है? तो अब यहां पर एक जो खसूसियत पाई जाती है माकूलात अवलिया में, मफाहीम माहौवी में, वो ये है कि ये मसबूक होते हैं हिस और तखय्युल से। यानी हिस और तखय्युल पहले है और माकूल अव्वल इन्हीं के तवस्सुत से बाद में हासिल होता है। यानी पहले आप उसको हिस करेंगे, फिर आप उसको तखय्युल में लेकर आएंगे, फिर आपकी अक्ल उससे क्या करेगी, मफहूमे कुल्ली बनाएगी कि जिसको हम माकूल अव्वल कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको देखा, आपको देखकर आपकी सूरत मेरे ख्याल में चली गई, और वहां अकल ने आपके इस सूरत हिस्सी और ख्याली से क्या कर दिया, एक मफहूम कुल्ली बना दिया इंसान के नाम। अब ये मफहूम इंसान जो है आप पर भी सिद्ध कर रहा है, आप पर भी सिद्ध कर रहा है, चूंकि मुख्तलिफ अफराद पर सिद्ध करता है, अकल कहते हैं ये कुल्ली है। तो ये कुल्ली मफहूम इंसान का कैसे मुझे हासिल हुआ, हिस से गुजर के आया, ख्याल से गुजर के आया, तब ये मफहूम कुल्ली बना है। तो लिहाजा माकूलात उला जो हैं वो हिस और तखय्युल से वाबस्ता हैं। लेकिन माकूलात सानिया जो हैं ये एहसास तखय्युल जुज़ियत के साथ मसबूक नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि माकूलात सानिया को हासिल करने के लिए आप पहले एहसास करें या हिस करें और फिर उसको तखय्युल में लेकर आए और फिर अक्ल उससे मफहूमे कुल्ली बनाएगी। ना, आप बेदूने हिस व ख्याल मफहूमे फलसफी और मफहूमे मंतकी तक पहुंच सकते हैं। मफहूम फलसफी तक आप क्या हैं, पहुंच सकते हैं। माकूल सानी जो है वो जरूरी नहीं है कि सूरत ख्याली व हिस्सी रखता हो। बर्दाज़े, ये एक खसूसियत जो है यहां पर बयान की गई है इस तरीके से। देखते हैं किताब के अंदर जो है वो किस तरीके से बयान हुआ है। बस ये चौथी खसूसियत पे आए, चौथा नुक्ता जो बयान किया है, क्या फरमाते हैं कि वीजगी दीगरे मफाहिम फलसफी इन अस के दर एजा आनहा मफाहिम व तसव्वुरात जुज़ई वजूद न दारद। मफाहिम फलसफी की खसूसियत यह है कि इन मफाहिम के मुकाबले में जुज़ई तसव्वुर या जुज़ई मफहूम वजूद नहीं रखता। मसलन, ऐसा नहीं है कि हमारा ज़हन इल्लियत की जुज़ई सूरत को पहले लेगा और फिर उससे एक कुल्ली मफहूम बनाएगा, ऐसा नहीं है। या मसलन क्या है, मफहूम मालूल की जुज़ई सूरत पहले लेगा उसके बाद कुल्ली मफहूम बनाएगा मालूल का। दुरुस्त है? ये माकूल सानी में इस तरीके से नहीं है। बिनाबर इन हर मफहूम कुल्ली के दर एजा आन ये तसव्वुर हिस्सी या ख्याली या वहमी वजूद दाश्त, कहते हैं कि हर वो मफहूम कुल्ली के जिसके मुकाबिल में तसव्वुर हिस्सी या ख्याली तसव्वुर या वहमी तसव्वुर मौजूद होगा, इस तरह के फर्क बैन आनहा फकत दर कुल्लियत व जुज़ियत बुद अज मफाहिम माहवी खाहत बुद। यानी देखें, हम पीछे ये पढ़ चुके हैं, मैं फकत ये कि इबारत वाज़े हो जाए दोबारा उसका तकरार करता हूं। हमने ये कहा था जब मैंने आपको देखा तो आपको जब मैं देख रहा हूं इस वक्त आपकी सूरत जो मेरे जहन में है उसको सूरत हिस्सी कहूंगा, जब मेरी तवज्जो आपसे हट जाएगी तो आपकी सूरत मेरे ख्याल में हिफ्ज हो जाएगी, लेकिन होगी वही सूरत जो हिस में थी, फर्क नहीं होगा। और फिर क्या है, अक्ल आकर क्या करती है, इस ख्याल से उस सूरत को लेती है और फिर उसको कुल्ली बना देती है, और कुल्ली भी जो बनी है वो इसी सूरत की कुल्ली बनी है, ना कि किसी और सूरत की। बस ये एक ही चीज है जो मुख्तलिफ मरहले तय कर रही है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि जब अक्ल के मरहले में आती है तो कुल्ली कहलाती है, जब ये हिस और ख्याल के मरहले में रहती है उस वक्त जुज़ई कहलाती है। यानी आपकी सूरत जब मैं आपको देख रहा हूं तो जुज़ई है, और जब मेरे ख्याल में है जुज़ई है, चूंकि आपकी सूरत है आप पर फकत मुंतबिक होती है, लेकिन जब अक्ल आकर उसको कुल्ली बना देती है तो उस वक्त क्या है, वो सूरत अब कुल्ली शक्ल में है, आप पर भी और आपके अलावा पर भी सिद्ध करती है। वाज़े आप देखें इबारत, फरमाते हैं कि हर मफहूम कुल्ली के मुकाबले में एक तसव्वुर हिस्सी या तसव्वुर ख्याली या तसव्वुर वहमी इस तरीके से मौजूद हो कि फर्क फकत कुल्लियत और जुज़ियत का हो। अगर इस तरीके से हो मफहूम कुल्ली के उसके मुकाबले में इस किस्म के मफाहीम पाए जाते हो, तसव्वुर पाए जाते हो, तो उस मफहूम कुल्ली को हम मफाहीम माहवी कहेंगे। अगर खुलासा करूं मैं इस इबारत का एक जुमले के अंदर, वो ये है कि मफहूम माहवी उस मफहूम को कहते हैं कि जिससे पहले तसव्वुर हिस्सी या तसव्वुर ख्याली या तसव्वुर वहमी मौजूद होता है। दुरुस्त है? ना आज मफाहीम फलसफी, ये जिससे पहले तसव्वुर हिस्सी मौजूद हो, जिसके मुकाबले में तसव्वुर ख्याली मौजूद हो, जिसके मुकाबले में तसव्वुर वहमी मौजूद हो, वो मफहूम माकूल उला तो कहला सकता है, माकूल अव्वल तो कहला सकता है, लेकिन उसको हम माकूल सानी नहीं कह सकते, उसको हम मफहूम फलसफी नहीं कह सकते। दुरुस्त है? मतलब वाज़े हुआ यहां तक? ये एक मतलब था कि इन्होंने यहां पर बयान फरमाया है। इसके बाद एक और मतलब जो हमारा कल रह गया था और वहां हमारी बात रुकी थी जाकर, वो ये मतलब था, फरमाते हैं कि मफाहीम फलसफी के बारे में एक ताबीर ये इस्तेमाल की जाती है कि मफाहीम फलसफी मा बे एजा खारजी नहीं रखता। मफहूम फलसफी मा बे एजा खारजी नहीं रखता। मा बे एजा खारजी से क्या मुराद है, देखें मैं इसको समझा दूं। अब इसमें इंग्लिश की इस्तेलाह मुझे नहीं मालूम, मा बे एजा खारजी की क्या हम इंग्लिश की इस्तेलाह जो है वो के बना सकते हैं या इसकी क्या तर्जमा हुई है, या आप दोस्तान इंग्लिश में जो फलसफा इस्लामी तर्जमा हुआ है उसकी तरफ जाकर शायद रुजू करें तो मिल जाएगा। एक तर्जमा मैंने देखा था, लेकिन वो मुझे दकीक नहीं लगा कि ये तर्जमा मतलब को पहुंचा रहा हो, लिहाजा उसको मैं यहाँ बयान नहीं करता। लेकिन मैं मतलब समझाता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि ये क्या है। अगर एक मफहूम मौजूद हो और उस मफहूम का खारिज में मिस्दाक हो, रुस्ते तो मुंतबिक हो रहा हो उसके ऊपर, उसका अपना मिस्दाक हो, तो इसको कहते हैं कि ये मफहूम माबे इजा रखता है। माबे इजा यानी जहन से हटकर अपना एक मिस्दाक रखता है। मफहूम कहां होता है? जहन में। यह मफहूम अपना मिस्दाक रखता है खारिज में। इसको कहते हैं कि यह मफहूम क्या है? माबे इजा खारिज रखता है। लेकिन मफाहीम फलसफी ऐसे मफहूम हैं कि जिनका अपना मिस्दाक खारिज में नहीं होता। मैं दोबारा खोल देता हूं इस मतलब को ताकि मतलब वाज़ेह हो जाए। अच्छा, एक बंदा आकर कहता है कि आप कैसे कह रहे हैं कि मफहूम फलसफी अपना मिस्दाक नहीं रखता, हालांकि हम इस आग को कह रहे हैं ये इल्लत है। मेरे सामने जो आग है इसको मैं क्या कह रहा हूं? इल्लत। तो अब ये इल्लत का जो मफहूम है वो इस आग पर सिद्ध कर रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मफहूम इल्लत माबे इजा नहीं रखती? मफहूम इल्लत माबे इजा नहीं रखता यानी मफहूम इल्लत का अपना जुदा कोई मिसदाक नहीं है। मैं कह रहा हूं ये आग है। जवाब इसका क्या है? जवाब इसका ये है कि ये जो आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये तो आग का मिसदाक है। रुस्ते मफहूम आग जो आपके जहन में था, ये खारिज में जो चीज मौजूद है ये मफहूम उस पर डायरेक्ट सिद्ध कर रहा है, तो उसका मिसदाक है ये। तो इल्लत दुरुस्त है कि इस पर इतलाक हो रही है, मफहूम इल्लत इस पर मुंतबिक हो रहा है, मफहूम इल्लत का इतलाक हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन मफहूम इल्लत अलग से अपना मिसदाक नहीं रखती। आप समझ में आ गया? ये जो मिसदाक है ये मफहूम आग का है, मफहूम इल्लत का अलग से आग से हटकर कोई मिसदाक नहीं है। लिहाजा मफहूम फलसफी को इस एतबार से कहा जाता है कि मफहूम फलसफी माबे इजाए खारजी नहीं रखता, यानी खारिज में अलग से मिसदाक नहीं रखता। वही जो मिसदाक मौजूद है उसी का हुक्म होता है, वो उस पर वो मुंतबिक हो जाता है, लेकिन अलग उसका अपना जुदा मिस्दाक नहीं होता। ये मतलब जो है उन्होंने यहां बयान किया। देखें तीसरी खसूसियत की जो मतलब हम बयान कर रहे थे, यहां आकर हमारा मतलब रुका था कि गाही अज इन वीजगी बे इन सूरत ताबीर मी शवद, कि ये जो हमने ऊपर खसूसियत बयान की है फलसफे मफहूम की, उसको हम बाज़ औक़ात इस तरीके से ताबीर करते हैं, फलासफा इस तरीके से ताबीर करते हैं कि मफाहीम फलसफी माबे इज़ाए ऐनी नादारद, ऐनी यानी खारजी, के मफहूम फलसफी जो है माबे इज़ाए ऐनी नहीं रखता, या यूं ताबीर करते हैं कि उरूज़ शान ज़हनी अस्त, के मफाहीम फलसफी का जो उरूज़ है, मफहूम फलसफी का जो हमल है वो क्या है? वो जहन के अंदर पाया जाता है। कि उरूज का आपको इंग्लिश तर्जमा बयान कर दिया था, अकोरेंस, अकोरेंस ये जो है वो जहनी है, मेंटल अकोरेंस है, ये एक ताबीर है। फिर आयतुल्लाह मिसबाह फरमाते हैं अगरचे इन ताबीरातों के अंदर जो है वो इश्काल व एतराज मौजूद है, इसकी तोजीहात और तावीलात करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी ये ताबीरें जो हैं वो मारूफ हैं और हम उससे इस्तफादा कर रहे हैं और उसके रद के अंदर वारिद नहीं हो रहे हैं। तो ये चार खसूसियात जो हैं, चार पॉइंट के अंदर तीनों मअखूलात की अलग अलग जो है वो खसूसियात बयान की हैं। अहम तरीन जो थी वही माकूल अव्वल यानी मफाहिम माहवी थी और मफाहिम फ़लसफ़ी थी कि मेरे ख़्याल में अब मतलब जो है वो वाज़े हो जाना चाहिए। आखिरी मतलब जो इस खसूसियात के अंदर है वो ये है कि अभी हम जब चौथे पॉइंट के अंदर खसूसियत पढ़ रहे थे मफाहिम फ़लसफ़ी की कि माकूल अव्वल जो है वो उससे पहले तसव्वुर हिस्सी या तसव्वुर ख्याली या तसव्वुर वहमी मौजूद होता है लेकिन मफाहिम फ़लसफ़ी में ऐसा नहीं है, तो इसके बाद आयतुल्ला मिसबाह हफ़ज़हुल्लाह ये फरमाते हैं कि वली बायद तवज्जो दाश्त के अक्स इन वीजगी दर मफाहिम माहोवी बे सूरत कुल्ली। अक्स इन वीजगी दर मफाहिम माहोवी बेतौर कुल्ली सादिक नीस्त। यानी ये जो इस तरफ से तो बात ठीक है कि वो मफहूम कुल्ली कि जिसके मुकाबिल में तसव्वुर हिस्सी मौजूद हो या तसव्वुर ख्याली मौजूद हो या तसव्वुर वहमी मौजूद हो उसको हम माकूल अव्वल कहेंगे ना कि माकूल सानी, मफहूम माहवी कहेंगे ना कि मफहूम फलसफी। कहते हैं इसका उल्ट नहीं है। कैसे उल्ट नहीं है इसका? खुद वजाहत कर रहे हैं, इबारत सही पढ़ते हैं उसको, यानी चुनी नीस्त, यानी ऐसा नहीं है कि दर एजा ए हर मफहूम माहवी एक सूरत हिस्सी या ख्याली या वहमी वजूद दाश्ते बाशद। यानी यूं नहीं कह सकते हैं हम कि हर मफहूम माहवी अपने से पहले सूरत हिस्सी रखता है या तो सूरत ख्याली रखता है या सूरत वहमी रखता है, यूं नहीं कह सकते। ऊपर वाली ताबीर जो है वो कह सकते हैं कि वो मफहूम कुल्ली के जिसके मुकाबिल में जिससे पहले तसव्वुर कुल्ली हो अपना तसव्वुर हिस्सी हो उसको हम माकूल अव्वल कहेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मफहूम माहवी हर मफहूम माहवी से पहले तसव्वुर हिस्सी और तसव्वुर ख्याली का होना जरूरी है ना। अगर तसव्वुर हिस्सी व तसव्वुर ख्याली हो और फिर मफहूम कुल्ली आए तो हम कहेंगे ये माकूल अव्वल है, लेकिन कायदा कानून कुल्ली तौर पर इस तरीके से नहीं बना सकते कि हर मफहूम माहवी जो है उससे पहले तसव्वुर हिस्सी और तसव्वुर ख्याली का होना जरूरी है। कहते हैं कि यूं कहना जो है वो दुरुस्त नहीं है। क्यों? कहते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी बात सूरतें मौजूद हैं कि जो कुल्ली हैं लेकिन उससे पहले ना तो सूरत हिस्सी है ना ख्याली है। जैसे देखें मसलन क्या है आपके पास वो मिसाल, मसलन मफहूम नफ्स एक मफहूम नौई व माहवी महसूब मी शबद। लेकिन जब हम कहते हैं ना नफ्स तो नफ्स क्या है, मफहूम माहवी है क्योंकि डायरेक्ट हासिल हुआ है बगैर तवस्सुब से हासिल हुआ है। मफहूम माहवी की यही तारीफ की थी हमने कि जो एहसास या हिस के जरिए क्या है हासिल हो जाए, डायरेक्ट हासिल हो जाए। तो कहते हैं कि बस मफहूम नफ्स क्या है, मफहूम माहवी शुमार होता है वली सूरत ज़हनी जुज़ई ना दारद, लेकिन मफहूम नफ्स अपने पहले सूरत जुज़ई नहीं रखता। खूब आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं रखता, क्योंकि नफ्स के माना को हमने हुजूरन दर्क किया है, इल्मे हुजूरी से नफ्स को दर्क किया है और हमारे जहन ने एक मफहूम कुल्ली बना दिया नफ्स के नाम से। अब ये मफहूम कुल्ली जो है वो हर नफ्स पे सिद्क करता है। फरमाते हैं कि ये जो मफहूम कुल्ली जो कि मफहूम माहवी है, ये मफहूम माहवी अपने से पहले तसव्वुर जुज़ई नहीं रखता। बस बयान ये करना चाहते हैं कि ये ताबीर दुरुस्त नहीं है कहना कि हर मफहूम माहवी से पहले तसव्वुर जुज़ई या सूरत जुज़ई का होना जरूरी है ना, ये ताबीर ठीक नहीं है। लेकिन ये ताबीर ठीक है कि जिस मफहूम कुल्ली से पहले हमें तसव्वुर जुज़ई व तसव्वुर ख्याली मिल जाए तो उस मफहूम कुल्ली को हम मफहूम माहवी कहेंगे। मतवाज़ है? तो ये एक मतलब जो है इन्होंने यहां पर बयान किया था। यहां तक हमारी जो बहस है वो माखूलात की अकसाम और माखूलात की जो मुख्तलिफ खसूसियात हैं उसके अंदर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इसके बाद फिर आयतुल्ला मिसबाह हफ़ज़हुल्ला जो हैं वो मफहूम एतबारी के अंदर जो है वो दाखिल हो जाते हैं और मफहूम एतबारी की तफसील जो है उसके एतबारी की क्या क्या इस्तिलाहात हैं और हमारी क्या मद्देनज़र है कि ये वाली बहस भी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि इसके ऊपर फिर तफसील से बहस जो है वो अगले दर्स में शुरू करते हैं। चूंकि एक नई बहस अगरचे मरबूत इसी के साथ ही है लेकिन चूंकि एक अलग उनवान है ये और इसको फिर इंशाल्लाह फिर बाद में देखते हैं और ये बहस हमारी आखिरी दर्स तक जो है वो आगे जारी रहेगी कि इंशाल्लाह अगले दर्स में इसको देखते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।